Eric.
Om Ajnana Timirandhasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Svapadantikam Vandeham Shri Guruho Shri Yuta Padakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganarakunathanvitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakhanvitamscha Namo Om Vishnu Padaya Krishna Prishthaya Bhutale Shri Mate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Mukam Karoti Vachalam Pangum Langhayate Girim Yat Kripatamaham Vande Shri Gurun Dina Tarinam Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha Pancha Tattvatmakam Krishnam Bhakta Rupa Svarupakam Bhakta Avataram Bhaktakhyam Namami Bhakta Shaktikam Aradhyo Bhagavan Vrajeshatanayas Taddhama Vrindavanam Ramya Kachidupasana Vrajavadhu Vargenaya Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanamamalam Prema Pumartho Mahan Shri Chaitanya Mahaprabhar Matamidam Tatradarah Naparah He Krishna Karuna Sindho Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Adhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sudhe Devi Pranamami Hari Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna तो हर साल की तरह है इस साल भी बलराम जयंती के बाद से श्री कृष्ण जन्माष्टमी तक कृष्ण कथा हर शाम होगी पिछले कई सालों से ये कथा चलती आई है विशेष करके श्रीमद् भागवत के दशम स्कंध की चर्चा चल रही है और अनेक वर्षों के बाद 28 अध्यायों की चर्चा हो चुकी है और इस बार से 29वें अध्याय से कथा प्रारंभ होगी 29वें अध्याय से कौन सी कथा प्रारंभ होती है आप जानते हैं? रासलीला। हम गोवर्धन लीला की चर्चा पिछले 2 सालों से कर चुके हैं। गोवर्धन लीला के बाद में वैसे तो आप जानते हैं कि अमावस्या के रात्रि पर गोवर्धन पूजा हुई। हालांकि ब्रजवासी इंद्र की पूजा करना चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण के कहने पर ब्रजवासियों ने गोवर्धन पूजा की। और उसके बाद में भ्रातृ द्वितीय का दिवस था। उसके बाद लगातार 7 दिन इंद्रदेव ने वर्षा बरसाई वृंदावन धाम के ऊपर। ऐसे नवमी का दिन आ गया। इसके बाद श्री कृष्ण ने इंद्र के ऊपर कृपा की। एकादशी का दिन भी आ गया। सभी ने एकादशी के व्रत का पालन किया। द्वादशी के दिन नंद महाराज स्नान करने गए थे अपने उपवास को तोड़ने के लिए। उसके पहले स्नान करना था यमुना में, लेकिन थोड़े जल्दी चले गए। वरुण देव के सेवकों ने उनको गिरफ्तार कर लिया। श्री कृष्ण ने स्वयं वरुण देव के पास में जाके वरुण देव को अपना दर्शन दे के नंद महाराज को छुड़ा लिया। और बाद में श्री कृष्ण ने सारे ब्रजवासियों को समस्त वैकुंठ लोकों का और गोलोक वृंदावन का भी दर्शन कराया। और ऐसे पूर्णिमा भी आ गई। और इसके बाद पूरा 1 साल बीत गया। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण के मन में इच्छा हुई रासलीला करने की। अब रासलीला ये एक ऐसी लीला है जिसके बारे में लोगों के मन में, आम व्यक्तियों के मन में बहुत गलत धारणाएं हैं, अनेक भ्रांतियां हैं। श्री कृष्ण की ये वास्तव में सर्वोच्च लीला है, आध्यात्मिक जगत की सर्वश्रेष्ठ लीला है। फिर भी इस भौतिक जगत में अज्ञान के कारण, भौतिक दृष्टि होने के कारण हमारे जीवन में दोषपूर्ण वातावरण देखने के कारण इन दोषों का आरोप हम श्री कृष्ण के ऊपर और उनकी लीलाओं के ऊपर भी करते हैं और सोचते हैं कि श्री कृष्ण की लीला भी इसी प्रकार की होगी जैसे यहां पुरुष और स्त्रियों के बीच में होती है इस दुनिया में। तो लोगों के मन में ऐसे कई गलत विचार हैं। कई बार लोग वास्तव में मासूम होते हैं परंतु अज्ञान होते हैं, और वो कहते हैं कि ऐसा क्यों करते हैं भगवान, भगवान को ऐसे अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए। अन्य लोग अज्ञानी होते हैं लेकिन इतने मासूम नहीं होते हैं, उनके अंदर थोड़ी ईर्ष्या और घमंड होता है, वो तो काफी जोर से बोलने लगते हैं कि ये कैसे भगवान हैं, इन्होंने ऐसी लीला क्यों की, ये किस तरह के भगवान हैं, भगवान नहीं हो सकते, या तरह तरह की चीजें कहते हैं और कृष्ण की निंदा करते हैं। कई ऐसे लोग हैं जो अपने अनैतिक कार्यों को करने के लिए श्री कृष्ण के रासलीला का आधार लेते हैं। श्री कृष्ण ने ऐसे किया तो हम क्यों नहीं कर सकते। थोड़े दिन पहले हमारे संस्था के एक भक्त किसी शहर में कृष्ण कथा कर रहे थे कई दिनों तक, जैसे यहां अब श्रृंखला हो रही वैसे उस शहर में हो रही थी। तो वहां जब खबर फैल गई तो वहां के किसी अखबार के पत्रकार ने इसके बारे में लेख लिखा कि कृष्ण, और ये काफी बड़े अक्षरों में अखबार में उस समाचार पत्र में आया करता था कि कृष्ण नरक में हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए हैं जिनका फल यही होगा कि उनको नरक जाना होगा। तो सारे भक्त बहुत विचलित हो गए थे। फिर अंत में क्या हुआ हमें पता नहीं, परंतु ये बहुत साधारण चीजें हम देख रहे हैं सब जगह। ऐसी गलत धारणाएं लोगों के मन में होती हैं। हम पिछली बार चर्चा एक बार कर रहे थे कि आजकल बात तो भारत के परम न्यायालय तक पहुंच गई है, और वहां के माननीय न्यायाधीशों ने भी अपना मत प्रस्तुत किया राधा कृष्ण लीला के ऊपर, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं था इसके ऊपर कुछ कहना। उनका अधिकार एक है, वो है इस संसार के न्याय के ऊपर, इस देश के कानून के ऊपर, न कि राधा कृष्ण के तत्व के ऊपर। तो ऐसे समय समय पर लोग कुछ न कुछ कहते जाते हैं, और जो तथा कथित पंडित होते हैं, जिनको लोग पंडित समझते हैं, बहुत विद्वान समझते हैं, उनकी भी धारणाएं ठीक नहीं होती हैं, उनको सही ज्ञान नहीं होता उनके पास, तो वो भी कुछ और कह डालते हैं और ऐसी भ्रांतियां और भी बढ़ जाती हैं, और आम व्यक्ति बेचारा बिल्कुल भ्रमित हो जाता है, उसे कुछ पता ही नहीं चलता है कि सच क्या है क्या नहीं है। वैसे धार्मिकता तो हर जीव के अंदर स्वाभाविक रूप से है, इसको मिटाया नहीं जा सकता, चाहे दुनिया की चमक धमक कितने भी क्यों न बढ़े, परंतु मूल रूप से व्यक्ति भगवान को खोज रहा है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सुख चाहता है। श्रील प्रभुपाद जी कहा करते थे कि हर एक व्यक्ति भगवान को खोज रहा है, कोई जानते हैं इस बात को, कोई नहीं जानते हैं। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति नहीं जानते हैं कि वो कृष्ण को खोज रहे हैं, वो इसलिए कि उनको पता नहीं कि कृष्ण में ही आनंद है, इस संसार में आनंद नहीं है। जो भाग्यवान हैं, जिनको ज्ञान प्राप्त हुआ है सही गुरु शिष्य परंपरा में, वो भली भांति जान लेते हैं कि श्री कृष्ण की भक्ति करने से दिव्य स्थान की प्राप्ति हो सकती है और दिव्य आनंद की प्राप्ति भी हो सकती है। तो खैर, इन सब गलत धारणाओं को मिटाने के लिए सही सिद्धांतों की स्थापना करना, ये हम सब भक्तों का कर्तव्य है। सारे समाज में इतना अपप्रचार दुष्प्रचार चल रहा है, हर एक व्यक्ति अपने मनगढ़ंत ढंग से कुछ न कुछ कहे जा रहा है, चाहे अखबार में हो, पत्रिकाओं में हो, दूरदर्शन टेलीविजन में हो, या आपस में लोग बात करते हैं, कथा करते हैं, प्रवचन देते हैं, उसमें हो। तो इसलिए सही बात क्या है, इसका स्पष्टीकरण करना बहुत आवश्यक है। हम सब कृष्ण की भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं, और हमारे भक्ति के प्रयास में अवश्य हम थोड़ा बहुत प्रचार भी करते हैं, और मैं समझता हूं कि हम में से हर एक भक्त को ऐसे अनुभव कभी न कभी तो हुआ होगा कि जब हम किसी को कृष्ण के बारे में कहने जाते हैं कुछ, या जब लोग ये जान जाते हैं कि हम कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं, तो कोई न कोई विरोध उठाते हैं, कोई न कोई तर्क करते हैं, ना तरह तरह के तर्क, अपने मनमाने ढंग से कुछ न कुछ तर्क निकालते हैं, और जब उनको उत्तर दिया जाता है बड़े सही ढंग से, उनमें से जो मासूम होते हैं, जो श्रद्धालु होते हैं, जो पुण्यात्मा होते हैं, जिनके अंदर पुण्य की पूंजी पर्याप्त मात्रा में बढ़ी हुई है, वो स्वीकार कर लेते हैं, परंतु जिनकी पूंजी इतनी पर्याप्त नहीं है, वो संतुष्ट नहीं होते हैं इन बातों से। जो गीता भागवत के सिद्धांत को समझने के बाद, सुनने के बाद भी वो मानते नहीं हैं, और अंत में जब उनके पास कोई उत्तर नहीं होता है तो उनका ब्रह्मास्त्र छोड़ते हैं, उनका ब्रह्मास्त्र तर्क। क्या है उनका ब्रह्मास्त्र तर्क? कृष्ण रासलीला क्यों की, और कोई उत्तर नहीं होता। यही एक बात उनका अंतिम अस्त्र है कि ये एक अस्त्र बोलने से वो सोचते हैं कि भक्त फिर चुप रह जाएंगे, क्यों भक्त कुछ बोल नहीं पाएंगे, क्यों कृष्ण ऐसे क्यों किया। तो ऐसी बातें आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। लोग ये भूल जाते हैं कि भारत में भी और आज भी ऐसे सैकड़ों सैकड़ों जगह हैं और ऐसे लाखों लोग हैं जो श्री कृष्ण के बहुत तीव्रता से भक्ति करते हैं, जो वृंदावन की लीलाओं को, मथुरा और द्वारका की लीलाओं को बहुत ऊंचा मानते हैं, उनको पूजनीय मानते हैं और इनके बारे में श्रवण कीर्तन करके अपना जीवन समर्पित करना चाहते हैं कृष्ण की ओर। हालांकि भौतिकतावाद आजकल बहुत आगे बढ़ गया है, फिर भी कृष्ण भक्ति की संस्कृति भगवान की दया से अभी तक पूरी तरह से नष्ट हुई नहीं है। हालांकि वृंदावन में जाके भी बाहर बहुत कुछ गड़बड़ दिखाई पड़ता है, फिर भी आप देखेंगे सारे ब्रजभूमि में बच्चा बच्चा रासलीला का गुणगान करेगा, स्त्रियां भी करेंगी, पुरुष भी करेंगे, बड़े छोटे सभी लोग करेंगे। और जहां भी कृष्ण भक्त हैं वो सब रासलीला को बहुत ऊंचा मानेंगे। तो जो लोग निंदा करते हैं इस बारे में नहीं सोचते हैं कि ये एक इतनी प्राचीन संस्कृति है जो हजारों वर्षों से चलती आई है और जो आज तक टिकी हुई है, तो इसके पीछे कुछ तो तत्व होगा, कुछ तो सिद्धांत होगा, कुछ तो दर्शन होगा। लोग नहीं सोचते हैं ऐसे, केवल टीका करते हैं, निंदा करते हैं, तर्क करते हैं। वैसे वो ये नहीं समझते हैं कि एक आध्यात्मिक गुरु के चरणों में रह के आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किए बिना हमारा कोई अधिकार ही नहीं होता है आध्यात्मिक विषय को ऊपर टीका करने के लिए। और ये रासलीला जो है ये कौन सी श्रेणी का विषय है आध्यात्मिक ज्ञान में? ये बहुत ऊंचा विषय है, पीएचडी का विषय है, मतलब विश्वविद्यालय में डिग्री प्राप्त करने के बाद जो आगे आदमी डॉक्टर का डिग्री प्राप्त कर लेता है, इतनी ऊंची डिग्री है ये विश्वविद्यालय की आध्यात्मिक विद्या के क्षेत्र में। और अनेक व्यक्ति ऐसे हैं जो आध्यात्मिक विद्या के पहले या दूसरे कक्षा में भी प्रवेश नहीं किए हैं अभी तक, फिर भी वो सीधे विश्वविद्यालय के स्तर के ज्ञान के ऊपर टीका करना चाहते हैं। ये तो ठीक नहीं है। समझ लीजिए कि हमने कोई गणित पढ़ा ही नहीं है जीवन में, और जो डिग्री कर रहे हैं गणित में उनके पास जाके हम तर्क करने लगे आपने ऐसे क्यों लिखा है, वो कहेगा भाई तुम समझते क्या हो गणित के बारे में, दो और पांच सात इतना भी नहीं जानते, तुम ये कैसे तुम समझ पाओगे कि हम क्या गणित कर रहे हैं। तो उसी प्रकार से रासलीला का विषय इतना ऊंचा है, फिर भी अज्ञानवश, अहंकारवश तरह तरह के लोग अपने मनमाने ढंग से टीका किए जाते हैं, तर्क करते रहते हैं और भगवान के प्रति ऐसे अपराध करने से उनका अज्ञान और बढ़ जाता है और घोर माया में पड़ जाते हैं। निंदा करने से भगवान से हम और दूर चले जाते हैं। इसलिए ऐसे बताया जाता है कि रासलीला की चर्चा केवल श्रद्धालु और गंभीर भक्तों के बीच में करनी चाहिए। हालांकि यहां तो सभी श्रद्धालु भक्त ही एकत्र हुए हैं श्री श्री राधा गोकुलानंद मंदिर में, फिर भी आने वाले दिनों में जन्माष्टमी के दिवस तक हम रासलीला की केवल संक्षेप में चर्चा करेंगे, परंतु जोर ये रहेगा इस बात पर कि गलत सिद्धांतों का, गलत विचारों का खंडन कैसे किया जाए और रासलीला के बारे में जो सही विचार है वो कैसे स्थापित की जाए। तो आने वाले दिनों में हमारा ये प्रयास रहेगा कि रासलीला को लोग कैसे सही दृष्टि से देखें, रासलीला के बारे में सही सिद्धांत की स्थापना हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। तो एक के बाद एक हम ऐसे कोई बातें रखते जाएंगे आप सबके सामने जो कि सुखदेव गोस्वामी जी श्रीमद् भागवत में कहते हैं और उनके श्रीमद् भागवत की रचना के ऊपर जो हमारे वैष्णव आचार्यों ने टीका की है, जैसे श्रील प्रभुपाद जी हैं, श्रील जीव गोस्वामी पाद हैं, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, तो ऐसे महान आचार्यों ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं क्या कहा है रासलीला के बारे में, इसके बारे में हम कुछ सोचने का और समझने का प्रयास करेंगे, ताकि जो भी संशय किसी के मन में हो वो सब नष्ट हो सकते हैं। हमारे अंदर भी यदि कोई ऐसे संशय हो भक्त होने के बाद भी, वो भी ठीक हो सकते हैं। और आगे चल के जब अन्य लोग हमसे बात करते हैं कि श्री कृष्ण ने रासलीला क्यों की, तो उनको सही तरह से समझाने के लिए भी हमारे पास सही ज्ञान भी हो सकता है। सबसे पहली बात तो ये है कि रासलीला इतना महत्वपूर्ण और ऊंचा विषय है, इसलिए हमें शास्त्रों के आधार पर और गुरुजनों के आधार के पास से यह सुनना चाहिए। कई लोग शास्त्रों को नहीं मानते, कहते हम शास्त्रों को नहीं मानते, नहीं हमें गुरु से सुनना है, फिर भी वो रासलीला की टीका करेंगे। तो उनसे हम प्रश्न कर सकते हैं कि रासलीला भगवान श्री कृष्ण ने की, ये आपने सुना कहां से? आपने कहीं से तो सुना, ये है केवल श्रीमद् भागवत में। रासलीला का वर्णन श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने किया है, ये है मूल वर्णन रासलीला का। तो यदि आप रासलीला की निंदा करते हैं, इसका मतलब है कि आप विश्वास करते हैं कि रासलीला हुई थी, सही बात है ना? नहीं तो आप निंदा कैसे कर सकते हैं? यदि आप विश्वास ही नहीं करते कि रासलीला हुई थी, आप कहते हैं रासलीला हुई ही नहीं, तो फिर निंदा करने का कोई सवाल ही नहीं है। जब आप निंदा करते हैं तो इसका मतलब है कि आप विश्वास रखते हैं कि रासलीला हुई थी। जब रासलीला हुई थी तो इसका वर्णन कहां से आपने सुना? आपने इधर उधर से सुन लिया, परंतु मूल इसका स्रोत कहां है? वो श्रीमद् भागवत है। श्रीमद् भागवत में सुखदेव गोस्वामी पाद ने यह वर्णन विस्तार में किया है, इसलिए ज्ञान सब जगह फैल गया है। तो यदि हम रासलीला हुई ऐसे विश्वास करते हैं और ये श्रीमद् भागवत से आया है, तो श्रीमद् भागवत में और जो भी कुछ कहा गया है उसको भी हमें मानना चाहिए। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जाय, श्री श्री गौर निताय की जाय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जाय। तो श्रीमद् भागवत में जो अन्य जगह जो कहा हुआ है वो भी आपको मानना चाहिए। फिर आपको यह भी मानना चाहिए कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया। जब यह कहा जाएगा तो कहेंगे नहीं, ये तो दंत कथा है। अरे फिर रासलीला दंत कथा कैसे नहीं है? आप केवल रासलीला हुई है ये मानना चाहते हैं और फिर रासलीला की निंदा करना चाहते हैं, परंतु श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया, कहते ये कैसे संभव है? एक छोटा बच्चा कैसे बड़े पहाड़ को उठा सकता है? इसका मतलब है कि आपकी इच्छा ही है कि आप निंदा करना चाहते हैं, आप सत्य को समझना नहीं चाहते हैं। आपका उद्देश्य सत्य समझना नहीं है, आपका उद्देश्य है निंदा करना, तर्क करना। आप श्रवण करके समझना नहीं चाहते हैं, अपने मनमाने ढंग से आपके मन में जो एक बात आई है उसको किसी न किसी तरह से येन प्रकारेण स्थापित करना चाहते हैं, परंतु आपका आधार शास्त्र नहीं है। मनोरथे नासति धावतो बही, आप आपके चंचल मन के विचारों के ऊपर अपने तर्कों को, अपने विचारों को, आपकी श्रद्धा को आधारित कर रहे हैं, तो ऐसे तर्क और ऐसे विचारों का क्या क्या मूल्य? कोई मूल्य नहीं है। तो इसलिए यदि कोई व्यक्ति रासलीला की निंदा करता है तो उसको यह भी मान लेना चाहिए कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाए थे, और यदि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठाया, यदि मानने के लिए तैयार हो गए, तो फिर वो समझने की तैयारी में है, फिर कोई बात हो सकती है उस व्यक्ति से। तब हम बता सकते हैं कि जब श्री कृष्ण ने पर्वत उठाया, जबकि उनकी आयु केवल 7 वर्ष की थी, जब या क्या कोई साधारण बच्चा कर सकता है ऐसे? साधारण बच्चे की बात तो दूर है, कोई बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति भी कर सकता है? नहीं। तो श्री कृष्ण भगवान है, इसलिए तो उन्होंने आसानी से अपने बाएं हाथ के छोटी उंगली से गोवर्धन पर्वत को 7 दिन और 7 रात लगातार उठाया और हसमुख चेहरे से खड़े हुए त्रिभंग मुद्रा में। ये है श्री कृष्ण भगवान। तो जब हम रासलीला की निंदा करते हैं, हम ये नहीं सोचना चाहते हैं कि कृष्ण कौन है। कृष्ण कौन है ये समझने के पहले हम उनके कार्यों की निंदा करना चाहते हैं, परंतु ये गलत है। जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि व्यक्ति कौन है, उसके कार्यों की निंदा हम कैसे कर सकते हैं? एक राजा बहुत सी चीजें कर सकता है जो साधारण प्रजा नहीं कर सकते हैं, परंतु यदि प्रजा का कोई सदस्य, कोई नागरिक राजा की निंदा करेगा कि ये आदमी ऐसे क्यों करता है, इसका मतलब है कि वो व्यक्ति नहीं जानता कि ये राजा है, और राजा होने का क्या मतलब है वो नहीं जानता है, इसलिए राजा की निंदा करता है। ठीक उसी प्रकार से जब इस दुनिया में भी लोग निंदा करते हैं रासलीला की, वो नहीं जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है। यदि वो जानते वास्तव में तो फिर वो कभी निंदा नहीं करते। हाँ, कम से कम जानने के बाद भी वो यदि निंदा कर रहे हैं तो और आगे बात की भी जा सकती है। तो सर्वप्रथम रासलीला को सही दृष्टि से समझने के लिए ये स्थापित करना, ये समझना, ये विश्वास करना बहुत आवश्यक है कि जिन्होंने रासलीला की वो हैं कौन। वो परम सत्य भगवान है। ये श्रीमद् भगवत गीता का सिद्धांत है, ये श्रीमद् भागवत का निष्कर्ष है। हर पन्ने में, हर अध्याय में, हर श्लोक में यही बार बार दिखाई पड़ता है और सुनने में आता है। श्री कृष्ण सत्य, परम सत्य है, उनसे श्रेष्ठ, उनसे ऊंचा कोई श्रेष्ठ सत्य नहीं है। श्री कृष्ण को असमऊर्ध्व कहा गया है, असम ऊर्ध्व, न उनके समान कोई है, न उनसे ऊंचा कोई है, क्योंकि वही सत्य है जिनसे अन्य सभी कुछ उत्पन्न होता है। ये है भगवान। भगवान वो है जो पूरी तरह से आध्यात्मिक है, वो आत्मा राम है, आत्म संतुष्ट है। भगवान वो है जो पूरी तरह से संतुष्ट होने के नाते उनकी कोई भौतिक कामनाएं नहीं है। तो भगवान फिर भौतिक चीजों में रमण क्यों करना चाहेंगे? किस प्रकार का व्यक्ति भौतिक चीजों में रमण करना चाहता है? जिसके अंदर कोई कमियां हैं, कोई अपूर्णता है, ऐसा व्यक्ति इस भौतिक सृष्टि का भोग करना चाहता है। परंतु भगवान श्री कृष्ण की ये भौतिक शक्ति है, ये उनकी शक्ति है, तो इस भौतिक शक्ति में भगवान कभी रमण नहीं करते हैं। उनकी अंतरंगा आध्यात्मिक शक्ति भगवान की सेवा करती है, उनको दिव्य आनंद प्रदान करती है। तो भगवान अपने आप में संतुष्ट हैं, उनको कोई अपने से बाहर किसी चीज को ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वैसे सही सिद्धांत तो ये है कि श्री कृष्ण से स्वतंत्र, श्री कृष्ण से अलग, श्री कृष्ण से बाहर कोई भी चीज नहीं है। सब कुछ श्री कृष्ण है। इस दृष्टि से कि हर कुछ, हर वस्तु या हर व्यक्ति श्री कृष्ण से उत्पन्न हुई है। कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसका संबंध श्री कृष्ण से नहीं है, जो श्री कृष्ण से उत्पन्न नहीं हुआ हो। ये भौतिक सृष्टि हो, आध्यात्मिक जगत हो, ये सब कुछ श्री कृष्ण से आया है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विताः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझसे दोनों आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत उत्पन्न होते हैं, और जो इस बात को अच्छी तरह से जान लेता है वो हृदय से मेरी भक्ति करता है। तो ये है श्री कृष्ण का स्थान। श्री कृष्ण भगवान होने के नाते भगवान शब्द की परिभाषा भी हमें जाननी चाहिए। श्रीमद् भागवत के प्रथम श्लोक में ही परम सत्य की परिभाषा की है व्यासदेव जी ने, और वो क्या परिभाषा है? जन्मादि अस्य यतः, कि परम सत्य वो है जिनसे सब कुछ उत्पन्न होता है। जन्म आदि, सृष्टि का सृजन उनसे होता है, सृष्टि का पालन उनसे होता है, सृष्टि का संहार भी उनसे होता है। तो श्री कृष्ण ही हर चीज के उद्गम है। सर्व कारण कारणम, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो उनका कोई कारण नहीं है, वही सब चीजों के कारण है। तो ये है भगवान। यहां इस भौतिक सृष्टि में यदि कुछ दिखाई पड़ता है तो वो भगवान में भी होना चाहिए, नहीं तो यहां कैसे आता? भगवान में है और हम सब भगवान से आए हैं, इसलिए हमारे अंदर भी है। तो यह इस भौतिक जगत में देखा जाता है कि तरह तरह के संबंध लोग अपने आप में रखते हैं। जगह जगह हम देखते हैं कि कोई सेवक है किसी का, कोई अपने आप को किसी का सेवक समझता है, किसी दूसरे व्यक्ति को अपना मालिक समझता है, ये संबंध होता है कई जगह। कई जगह दो व्यक्तियों के बीच में दोस्ती का संबंध होता है। कई जगह कोई लोग दूसरों को अपना बच्चा समझते हैं, कोई दूसरों को अपना माता पिता समझते हैं, ये भी संबंध रहता है। और इस दुनिया में ये भी देखा जाता है, पति पत्नी का संबंध होता है, प्रेमी प्रेमिका का संबंध होता है। तो ये सारे जितने भी संबंध यहां पर दिखाई देते हैं सारे भौतिक सृष्टि में, वो आए कहां से? यूं ही तो नहीं आए। ये सब यहां इस दुनिया में पाए जाते हैं क्योंकि ये सारे संबंध भगवान में भी हैं, इसलिए यहां पे पाए जाते हैं। परंतु यहां उन शुद्ध पवित्र आध्यात्मिक दिव्य संबंधों का विकृत प्रतिबिंब पाया जाता है। यहां जो संबंध पाए जाते हैं वो शुद्ध संबंध नहीं है, ये माया के अंतर्गत संबंध है। परंतु भगवान श्री कृष्ण के धाम में जो भी संबंध पाए जाते हैं वो शुद्ध है, और वहां एक आध्यात्मिक आनंद का आदान प्रदान किया जाता है जिसको रस कहते हैं, भक्ति रस। इस भक्ति रस का आदान प्रदान भगवान और उनके भक्तों के बीच में होता है। तो यहां ये सारे संबंध हम देखते हैं और इसमें भी हम आनंद लेते हैं। जब यहां पति पत्नी का संबंध हो सकता है तो भगवान क्यों नहीं रख सकते? कई बार लोग सोचते हैं कि हमारा ऐसे संबंध होना ठीक है लेकिन भगवान का नहीं होना चाहिए। कैसे संभव है? ये तो ठीक नहीं है। हमारे अंदर वो इच्छा है कि हम भी अच्छा कुटुंब का जीवन बिताएं, कौटुंबिक जीवन बिताएं, पारिवारिक जीवन बिताएं, क्योंकि भगवान के अंदर है वो इच्छा। यदि कोई कहे कि फिर वैराग्य क्यों होता है? क्योंकि वैराग्य की भी भगवान में है परिपूर्णता से। हर चीज जो यहां इस भौतिक सृष्टि में हम देखते हैं वो सब भगवान के अंदर है, शुद्ध और परिपूर्ण अवस्था में। तो इसलिए भगवान के अंदर भी ऐसे संबंध रखने की इच्छा होती है, परंतु भगवान करे क्या, उनके बाहर तो कोई है ही नहीं संबंध रखने के लिए, फिर किनके साथ वो संबंध रखेंगे। फिर वो अपने आप को ही विस्तार करते हैं, अपने शक्ति का विस्तार करते हैं, फिर अपने ही अंतरंगा लादिनी शक्ति से वो एक महिला का की उत्पत्ति करते हैं, और वो है श्रीमती राधा रानी। श्रीमती राधा रानी कृष्ण ही हैं, कृष्ण से भिन्न नहीं है वो, और श्रीमती राधा रानी से भी अनेक गोपियां उत्पन्न होती हैं, वो भी श्री कृष्ण की अंतरंगा शक्ति हैं, वो भी श्री कृष्ण से भिन्न नहीं है, और फिर श्री कृष्ण उनके साथ रस का आदान प्रदान करते हैं। तो इसमें तो कोई दोष नहीं है, जब हम समझ लेंगे कि वो भगवान है और वो कुछ भी कर सकते हैं, तो फिर ये सब भ्रांति हमारे मन में नहीं रहेंगी। और हां, यदि कोई इस बात को मानते भी हैं कि श्री कृष्ण ने रासलीला की, तो उनको यह भी मानना चाहिए कि रासलीला का जो वर्णन श्रीमद् भागवत में है वो भी सही है। और क्या सही वर्णन है, कि हजारों की संख्या में गोपियां आई थीं श्री कृष्ण के साथ रासलीला करने के लिए, और हर एक गोपी के साथ श्री कृष्ण नृत्य कर रहे थे। जितनी गोपियां थी उतने श्री कृष्ण थे, एक श्री कृष्ण अनेक कृष्ण बने, एक ही साथ, एक ही समय, एक ही जगह पर। तो क्या यह भगवान के अलावा किसी और के लिए संभव है? ऐसे वर्णन सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि कृष्ण के दोनों तरफ गोपियां थी, हर एक कृष्ण के बीच में दोनों बाजू में कृष्ण, और कृष्ण के दोनों बाजू में गोपियां। ऐसे उन्होंने एक मंडल बनाया, रास मंडल, और ऐसे रास लीला हुई। और भगवान की योग माया शक्ति के कारण गोपियां समझ नहीं पाए कि इतने सारे कृष्ण हुए हैं, वो सोच रही थी श्री कृष्ण केवल मेरे साथ ही रासलीला कर रहे हैं। तो यदि हम ये स्वीकार करते हैं कि रासलीला हुई और इस प्रकार से हुई, तो ये भगवान ही कर सकते हैं ना, और कौन कर सकते हैं? इस संसार का कोई व्यक्ति अपने आप को हजारों जगह हजारों बार विस्तार करने की बात तो दूर है, दो बार भी नहीं कर सकता। हम यदि यहां हैं तो वहां नहीं हो सकते, वहां हैं तो यहां नहीं हो सकते, परंतु श्री कृष्ण सब जगह एक साथ उपस्थित रहते हैं, ये उनकी अचिंत्य शक्ति है। जीव गोस्वामी पाद बताते हैं कि जब तक हम इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि भगवान की शक्ति अचिंत्य है, अपार है, तब तक हम भगवान को और उनकी लीलाओं को समझ नहीं पाएंगे। यह संसार में ब्रह्मा जी तक भी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं है जिनके बारे में कहा जा सकता है कि उनकी शक्ति अचिंत्य है, अपार है, अतुलनीय है। केवल कृष्ण ही हैं जिनका स्थान अद्वितीय है, अतुलनीय है। इसलिए वो जो भी कुछ करते हैं अद्भुत है, और अन्य कोई नहीं कर सकता, इसलिए असमोर्ध्व। और केवल रासलीला में नहीं, द्वारका में भी भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पटरानियां थी, और हर एक पटरानी के लिए श्री कृष्ण ने एक एक बड़ा सुंदर राजमहल बनाया, जो कि अनमोल रत्नों से, हीरों से आदि सुशोभित था। और हर एक महल में श्री कृष्ण एक ही समय पर उपस्थित रहते थे, हर एक रानी के साथ कृष्ण थे, और हर एक रानी यही सोचती थी कि श्री कृष्ण केवल मेरे साथ हैं। तो ये है भगवान। तो रासलीला की निंदा करने के पहले ये थोड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए कि श्री कृष्ण ने अपने आप को इतने हजारों रूपों में विस्तार किया, ये कैसे संभव है? यदि कोई कहे हम विश्वास नहीं करते कि उन्होंने अपने आप को इतना विस्तार किया, तो फिर उनको उत्तर देना होगा, फिर आप ये भी कहिए कि हम विश्वास नहीं करते कि रासलीला हुई। फिर जब रासलीला हुई नहीं तो फिर निंदा ही नहीं कीजिए, फिर उनको थोड़ा प्रसाद दीजिए ताकि वो शांत बैठ जाएंगे, फिर कुछ बात नहीं करेंगे। तो इस प्रकार से लोगों को धीरे धीरे समझाना हमें चाहिए कि कृष्ण कौन है, कृष्ण भगवान है, और ये रासलीला जो है ये क्या है, ये भगवान के धाम से लीला यहां पर आई है। भगवान का भी एक धाम है जो इस भौतिक सृष्टि से परे है, वहां उनके गोलोक वृंदावन धाम में भगवान श्री कृष्ण नित्य रूप से रासलीला और अन्य लीलाएं करते हैं, और जब वही श्री कृष्ण इस भौतिक सृष्टि में अवतीर्ण होते हैं तो यह आकर भी उन्हीं लीलाओं को संपन्न करते हैं जो कि वो वहां गोलोक वृंदावन में करते हैं, उन्हीं लीलाओं का प्रदर्शन यहां होता है इस भौम वृंदावन में। वही गोलोक वृंदावन जब प्रकट होता इस भौतिक सृष्टि के भीतर, उसे भौम वृंदावन कहते हैं, भूमि के ऊपर वृंदावन का प्राकट्य। तो भौम वृंदावन में जो रासलीला हो रही है वो गोलोक वृंदावन में होने वाली लीला से भिन्न नहीं है, वही लीला है वो। तो ये कोई साधारण कार्य नहीं है, हमें सोचना नहीं चाहिए कि ये यहां के संसार के कार्यों की तरह है, नहीं। भगवान ने अपने पवित्र लीलाओं का प्रदर्शन यहां भौतिक सृष्टि में किया है, इतना ही है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। जो नीति का बंधन है संसार के अंदर, जो बहुत आवश्यक है, वो हम सबके लिए है। रासलीला के बहाने किसी भी व्यक्ति को अनैतिक कार्य नहीं करने चाहिए, क्योंकि हमें यह जानना चाहिए कि कृष्ण जब भगवान हैं तो सृष्टि के नियम उन्हीं ने बनाए हैं हमारे लिए, उन्होंने अपने लिए नहीं बनाए। श्री कृष्ण के लिए क्या नियम हो सकते हैं, भगवान कौन से नियम से बद्ध हो सकते हैं, कौन ऐसे है जो कृष्ण के लिए नियम बनाएगा कि आपको ऐसे नियमों का पालन करना है? वही बना सकता है जो श्री कृष्ण से श्रेष्ठ है, और श्री कृष्ण से श्रेष्ठ कोई है नहीं। तो श्री कृष्ण हम सबके लिए नियम बनाते हैं, और उन नियमों को यदि हम पालन करेंगे तो हमारी भलाई होती है, और हम नियम का उल्लंघन करेंगे तो हमें दंड मिलता है। लेकिन श्री कृष्ण जब चाहे जो चाहे कुछ भी कर सकते हैं, इसको भगवान कहते हैं। नहीं तो भगवान बनने का क्या मजा है, क्या मतलब ही क्या है? प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कभी कभी राजा एक कारागार में, जेल में जाता है देखने के लिए कि मेरे राज्य में जो कैदी हैं, गुनहगार हैं, उनका देखभाल कैसे हो रहा है। और जब राजा ऐसे चले जाता है तो कैदियां भी सोचते हैं, अरे एक नया कैदी आ गया, चलो अच्छा हो गया, और आपस में बातचीत करते हैं, इसने भी कुछ खून वून किया होगा। तो ऐसे अज्ञान के कारण अन्य कैदी लोग राजा के बारे में कुछ कहते हैं, लेकिन राजा जैसे आया है वैसे जाएगा भी। तो ठीक उसी प्रकार से श्री कृष्ण स्वेच्छा से इस भौतिक सृष्टि में आते हैं, लीला करते हैं, चले जाते हैं स्वेच्छा से। हमारा जन्म स्वेच्छा से नहीं होता, न हमारी मृत्यु स्वेच्छा से होती है, जबरदस्ती हमारा जन्म और मृत्यु होता है, बुढ़ापा बीमारी सब जबरदस्ती होते हैं हमारे साथ। तो ये सारे नियम हमारे ऊपर लागू होते हैं, और नीति का पालन करना हम सबके लिए मनुष्य समाज में अनिवार्य है, बहुत ही आवश्यक है। यदि भौतिक जगत में लोग नीति का पालन नहीं करेंगे तो उत्पात हो जाएगा, बहुत भयंकर समस्या हो जाएगी, इसलिए नीति का पालन करना ये बहुत आवश्यक है। और नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि हम किसी अन्य व्यक्ति के पत्नी के साथ कुछ कार्य नहीं करें, या अपने पत्नी से अलावा और किसी के साथ कुछ कार्य नहीं करें, ये हम सबके लिए है। इनका पालन बड़े मजबूती सख्ती से करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे और हम अन्य चीजों को, इस दुनिया को हमारे भोग का विषय समझेंगे और भोक्ता बनने का अधिकार जमा लेने का प्रयास करेंगे, तो इसके कारण हम दंडित ही हो जाएंगे, क्योंकि हम भोक्ता नहीं हैं, हम भोग्य हैं। श्री कृष्ण भगवान होने के नाते भोक्ता है, और केवल कृष्ण ही भोक्ता है, कृष्ण के अलावा हर कोई भोग्य है। इसलिए हमारा भोग करने का कोई अधिकार नहीं है, विशेष करके इस भौतिक प्रकृति के ऊपर भोग करने का प्रयास जब जीव करता है तो बद्ध हो जाता है। पुरुषः प्रकृति स्थो ही भुंक्ते प्रकृति जय गुणे कारण गुण संगोस्य सत असत योनि जन्मसु। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जीव भोक्ता बनने का इच्छा रखता है, इस भौतिक प्रकृति का भोग करना चाहता है, तो उस समय उसे बारंबार जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाना पड़ता है। कभी अच्छी योनि, कभी बुरी योनि, नीच ऊंची योनि में भ्रमण करते रहना पड़ता है। तो हमारे लिए जहां नीति का सिद्धांत लागू होता है, श्री कृष्ण के लिए नीति क्या चीज है? श्री कृष्ण परम सत्य है, उनमें कोई द्वंद्व नहीं है। हमारे लिए पाप पुण्य का भेद होता है और हमें करना चाहिए, परंतु श्री कृष्ण में कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि वो आध्यात्मिक स्तर पर स्थित है, वो तो परम सत्य है। द्वंद्वातीत हमेशा रहते हैं, गुणातीत है। तो भगवान जो भी कुछ करते हैं वो नैतिक है। भगवान आके झूठ भी बोले तो वो झूठ सत्य है। ये हम तब बात समझ पाएंगे जब पूरा विश्वास होगा कि श्री कृष्ण भगवान है, और भगवान होने का मतलब क्या है। दुर्भाग्यवश जब लोगों को ज्ञान नहीं होता कि भगवान होने का मतलब क्या है, जब कोई संसार में कोई भी व्यक्ति थोड़ा बहुत चमत्कार दिखा देता है तो लोग उसे भगवान कह देते हैं। किसी ने कुछ जादू कर दिया, कोई चीज उत्पन्न कर ली, कोई सोना उत्पन्न कर लिया, तो लोग कहते हैं ये भगवान हो गया। एक छोटे से व्यक्ति ने एक सोने का गहना निकालने से उसको भगवान मानते हैं आप, तो सोने का खान जिसने बनाया है उसका क्या, वो कौन है? इस तरह से भगवान के बारे में अज्ञान होने के कारण, भगवान क्या चीज है, कौन है, भगवान होना क्या मतलब है, ये नहीं जानते हैं, इसलिए लोग ऐसे भगवान के कार्यों के ऊपर गलत टीका करते हैं। तो भगवान के लिए कोई अनैतिक चीज नहीं होती है, और क्योंकि सब कुछ भगवान की ही संपत्ति है, भगवान से बाहर कुछ नहीं है, जैसे हम पहले भी कह रहे थे, तो भगवान यदि अपनी ही संपत्ति, अपने ही शक्ति के साथ रमण करना चाहे तो उसमें क्या दोष है? यदि आप आपके घर में बैठे हैं और आपके बच्चे के साथ खेल रहे हैं, या कोई बच्चा आपके घर में अपने खिलौने के साथ खेल रहा है, तो आपके घर से बाहर कोई व्यक्ति आके टीका करे कि यह बच्चा खिलौने के साथ क्यों खेल रहा है, उसका क्या अधिकार है? यह खिलौना उस बच्चे का है, आपका तो कोई अधिकार नहीं है उसके ऊपर, तो आप टीका करने वाले कौन होते हैं? हाँ, आप जाके उस खिलौने के साथ नहीं खेल सकते, क्योंकि वो आपका नहीं है, फिर वो चोरी हो जाएगी। ठीक उसी प्रकार से भगवान जब कुछ लीला करते हैं, कुछ भोग करते हैं, तो वो अपने ही संपत्ति के साथ करते हैं, अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ करते हैं, किसी दूसरे वस्तु का भोग नहीं करते हैं, क्योंकि कोई दूसरा वस्तु है ही नहीं। परंतु हम इस भौतिक सृष्टि में रहकर जब कुछ भोग करना चाहते हैं, तो हमसे बाहर किसी और वस्तु का भोग करने का प्रयास करते हैं, इसलिए हमारे लिए वो अनैतिक हो जाता है, वो पाप कहलाता है, तो हम दंडित हो जाते हैं। परंतु भगवान जब उसी प्रकार का कार्य करते हैं, उसी प्रकार का, वही नहीं, उसी प्रकार का कार्य करते हैं, हमारी दृष्टि से, तो कृष्ण के भक्त उनका गुणगान करते हैं। और जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो महान आचार्य होते हैं, वो श्री कृष्ण की रासलीला की पूजा करते हैं, क्योंकि ये रासलीला की महानता है, इसका महत्व है, महात्म्य है। तो पहली बात ये है रासलीला को समझने के लिए कि श्री कृष्ण कौन है, ये हमें जानना चाहिए। ये भगवान है और भगवान होने का क्या मतलब है, ये भी जानना चाहिए। दूसरी बात है जो हम पहले कह चुके थे कि रासलीला को सुनने के लिए और बोलने की बात तो दूर है, टीका करने की बात दूर है, और कुछ इसके ऊपर लिखने की बात दूर है। कौन व्यक्ति योग्य है? वही व्यक्ति जिसने प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा में श्रीमद् भागवत का ज्ञान स्वीकार कर लिया हो नम्रता से, हृदय से, और जो नियमों का पालन कर रहा हो, नियमित जीवन जी रहा हो, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को शुद्ध करने का प्रयास कर रहा हो सद्गुरु के आदेश के अनुसार, और प्रामाणिक भक्तों के संग में बैठ के जब रासलीला का श्रवण होता है तब ठीक है। परंतु यदि कोई व्यक्ति ऐसी तपस्या नहीं करना चाहता, नियमित जीवन बिताना नहीं चाहता है, सद्गुरु के शरण को स्वीकार नहीं करना चाहता है, शास्त्रों की वाणी को सुनना नहीं चाहता है, तो फिर उसे कोई अधिकार नहीं है कि वो रासलीला के बारे में कुछ कहे भी। श्रीमद् भागवत में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सोचना भी नहीं चाहिए इस चीज के बारे में, बोलने की बात तो दूर है। कम से कम ये चार नियमों का पालन तो होना चाहिए, मांसाहार नहीं करना, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, अवैध संगति नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, साथ साथ में कृष्ण भक्तों के बीच में आकर भगवान का नाम लेना चाहिए, भगवान की कथा श्रद्धा पूर्वक सुननी चाहिए, भगवान की सेवा अन्य रूपों से करनी चाहिए, तब जाके धीरे 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 से ये रास लीला का तत्व जो है ये हमें समझ में आएगा। तो ये दूसरी बात थी कि रास लीला को सुनने के लिए और बोल उसके बारे में बोलने के लिए भी योग्यता चाहिए। तीसरी बात जो हम आज बताना चाहते हैं आपको वो ये है कि कृष्ण की आयु रासलीला के समय जब इन पांच अध्यायों का वर्णन हुआ है, 29 से लेकर 33 तक ये पांच अध्याय हैं, इसको रास पंचाध्याय कहते हैं। रास पंचाध्याय से वैष्णव समाज में ये पांच अध्याय विख्यात हैं। तो इस रास पंचाध्याय के समय जो कि गोवर्धन लीला के बाद हुई, उस समय श्री कृष्ण की आयु क्या थी? 8 साल की थी। गोवर्धन धारण लीला कृष्ण के 7 साल की आयु में हुई और ये 1 साल बाद में हुई, तो श्री कृष्ण केवल 8 साल के थे और गोपियां उनसे भी कम आयु की थी। अब ये बताइए, हम हर रोज 8 साल के बच्चों को खेलते हुए देखते हैं, बच्चे हैं बच्चियां हैं दोनों होती हैं, क्या हम हंगामा मचाते हैं? क्या हम बोलते हैं कितना अनैतिक कार्य कर रहे हैं? क्या हम बोलते हैं? हर रोज हम देखते हैं जगह जगह में बच्चे खेल रहे होते हैं आपस में, तो 7-8 साल की आयु में बच्चों को क्या पता है, क्योंकि वो मासूम होते हैं इसलिए उनके खेल में कोई दोष नहीं है। आपस में भले वो खेल भी लें तो उसके बारे में हम टीका नहीं कर सकते। तो उस समय श्री कृष्ण तो केवल 8 साल के थे, तो जो ऐसे ज्यादा तर्क करते हैं ना, सबसे पहले यही बात बोल देनी चाहिए, तो वहीं के वहीं रुक जाएंगे अपने रास्ते में कि श्री कृष्ण इस रासलीला का वर्णन जब हुआ उस समय केवल 8 साल के थे बस। और उनको पूछिए, आपका बच्चा 8 साल का है, आपके पास लड़का है और किसी छोटी लड़की से जाके खेले जो 6-7 साल की है, तो आप कोई बड़ा दोष मानेंगे इसको? नहीं मानेंगे। तो रासलीला की निंदा क्यों कर रहे हैं जब श्री कृष्ण की आयु केवल 8 साल की थी? तो इस प्रकार से हमें क्रमशः एक एक बात से लोगों को समझाना चाहिए। यह तीसरी बात थी। और चौथी बात है कि ये जो भी लीला हुई भगवान की वृंदावन में, रासलीला हो, माखन चोरी हो, जो भी कुछ हो, वो सब भौतिक प्रकृति के नियमों के अंतर्गत नहीं हुआ। ये सारे योग माया के अंतर्गत हुए। योग माया और महामाया में अंतर है। महामाया भौतिक प्रकृति में कार्य करती है। महामाया भगवान की वो शक्ति है जो उन बद्ध जीवों को भ्रम में डालती है, भुलावे में डालती है, जो कि कृष्ण के शरण में नहीं आना चाहते हैं, जो कि श्री कृष्ण से विमुख हैं, जो श्री कृष्ण से विरुद्ध हैं, जो स्वतंत्र होकर भोग करना चाहते हैं। ऐसे जीवों के लिए महामाया है जो उनको इस जन्म मृत्यु के चक्र में बांध के रखती है। और ऐसे जीव अपने आप को शरीर समझ के अपने भ्रांतियों को बढ़ाते रहते हैं। इसलिए इसे महामाया कहते हैं। ऐसे महामाया के अंतर्गत अनेक लोग कृष्ण को नहीं जानते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितम् परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम। वो कहते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जो अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण मुझे नहीं जानते हैं, मुझ भगवान को, जो कि मनुष्य रूप में प्रकट हुआ हूं। इस युग की मैं मनुष्य की तरह दिखता हूं तो लोग मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं। परम भावम अजानंतो, वो मेरे परम भाव को नहीं जानते हैं। मम भूत महेश्वरम, मैं सारे समस्त प्राणियों का मैं ईश्वर हूं, स्वामी हूं। तो भगवान की महामाया शक्ति में सारी दुनिया चल रही है। कठपुतली की तरह हर एक व्यक्ति तरह तरह के भ्रम में नाच रहा है, परंतु योग माया केवल उनके लिए है जो श्री कृष्ण के अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत है, जो श्री कृष्ण के शुद्ध भक्त हैं, जिनके हृदय में कोई भी भौतिक कलमश नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है, और जिनके हृदय में कृष्ण प्रेम उत्पन्न हो चुका है, और जो केवल कृष्ण प्रेम के अलावा और कृष्ण की सेवा के अलावा कुछ नहीं जानते हैं। ऐसे भक्तों के लिए, ऐसे लोगों के लिए भगवान की योग माया शक्ति है। तो ये रास लीला भगवान की योग माया शक्ति के अंतर्गत हुई। 29वें अध्याय के पहले ही श्लोक में इन दोनों बातों को सुखदेव गोस्वामी कहते हैं। सबसे पहले वो घोषणा करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान हैं, और ये भी कहते हैं कि जब उनकी रासलीला करने की इच्छा हुई तो ये रासलीला योग माया के अंतर्गत हुई, महामाया के अंतर्गत नहीं। तो आइए इस श्लोक का उच्चारण हम करते हैं। ये 29वें अध्याय का पहला श्लोक है, मतलब जहां रासलीला के विषय की चर्चा सुखदेव जी कर रहे हैं। श्री बादरायणी रुवाच, भगवान् पिता रात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिकाः वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः योग भगवान् पिता रात्रिः शारदोत्फुल्लमल्लिकाः वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः एक प्रभु जी एक माता जी बोलेंगे
श्री बादरायणी रुवाच भगवान अपि रात्रि शारदोत्फुल्ल मल्लिका योगमायामुपाश्रितः
माताजी कोई
श्रीबादरायणीरुवाच
अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा श्री बादरायणी ने कहा बादरायणी मतलब सुखदेव गोस्वामी श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण भगवान हैं फिर भी खिले चमेली के फूलों से महकती उन शरदकालीन रातों को देखकर उन्होंने अपने मन को प्रेम व्यापार की ओर मोड़ा। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने अपनी अंतरंगा शक्ति का उपयोग किया। देखिए कितनी महत्वपूर्ण बातें इसी श्लोक में। सबसे पहले सुखदेव जी यही कहते हैं भगवान अपि, हालांकि वो भगवान है फिर भी वो ऐसे लीला करना चाह रहे थे। दूसरे शब्दों में साधारण तौर से भगवान है, पूरी तरह से संतुष्ट हैं, फिर भी वो करना चाहते हैं क्योंकि भगवान अपने अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत लीला करना चाहते हैं। भौतिक सृष्टि में रमण नहीं करना चाहते हैं भगवान, इसलिए योग मायाम उपाश्रितः। तो पहले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी ने स्पष्टीकरण कर दिया है कि जो ये कार्य करने वाले हैं, लीला करने वाले हैं, वो स्वयं भगवान हैं और ये जो लीला है वो योग माया के अंतर्गत होनी है, महामाया के अंतर्गत नहीं। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि इस दुनिया में जो तरह तरह के नृत्य होते हैं, प्रभुपाद जी के समय में अंग्रेजी पाश्चात्य देशों में बॉल डांस ही बहुत मशहूर हुआ करता था, आजकल और तरह तरह के नृत्य हो गए हैं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये रास लीला ये कोई बॉल डांस की तरह नहीं है, या इस भौतिक दृष्टि इस भौतिक सृष्टि के पुरुष स्त्रियों के बीच में किसी नृत्य की तरह नहीं है, ये योग माया के अंतर्गत है। क्योंकि यहां हम इस चीज को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि श्री कृष्ण की रासलीला भी ऐसी ही होगी। एक बार श्रील प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया था, एक दृष्टांत दिया था। एक गौशाला में एक बार एक गाय थी और गौशाला को आग लग गई। जब आग लगी तो बेचारी गाय डर गई, डर के मारे गौशाला से दौड़ते हुए बाहर चली गई। तो उस दिन के बाद इतना भय हो गया उस गाय के हृदय में कि जब भी वो लाल रंग देखती तो सोचती कि ये आग है और वहां से भाग जाती। और मालिक जितना भी कोशिश करे उसे रोक के रखने के लिए वो मानती नहीं थी, डर के मारे भाग जाती थी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार से हम जहां भी पुरुष स्त्री देखते हैं सोचते हैं कि वो वैसे ही होगा जैसे कि हम यहां देखते हैं। श्री कृष्ण भी एक साधारण पुरुष की तरह दिखते हैं, गोपियां भी साधारण महिलाओं की तरह दिखती हैं, जैसे हम यहां भौतिक जगत में देखते हैं। यहां हमने पुरुष स्त्रियों का संबंध देखा है तो वो भी वैसे ही होगा, यहां लाल दिखा है तो वो भी लाल होगा, यह लाल ये आग है लाल है वो लाल है वो भी आग होगा। तो ये हमारा तर्क रहता हमारे मन में, इसलिए हम श्री कृष्ण के रासलीला को गलत समझते हैं, क्योंकि उनके कार्यों को साधारण भौतिक प्रकृति महामाया के कार्यों के समान समझते हैं, परंतु ये गलत है। सुखदेव जी बताते हैं योग मायाम उपाश्रितः। तो अब तक कितने कारण हमने बताए, कौन से हैं वो कारण चार, क्या क्या बातें हम बता सकते हैं? सबसे पहले योग्यता क्या होनी चाहिए किसी व्यक्ति की रासलीला के बारे में कुछ बोलने के लिए, कुछ लिखने के लिए, सुनने के लिए भी, उसके बारे में चर्चा की। सद्गुरु से श्रवण करना चाहिए, श्रीमद् भागवत से और अन्य ग्रंथों से समझना चाहिए जो प्रामाणिक हैं, और नियमित जीवन जीना चाहिए सद्गुरु के आदेशों के अनुसार। दूसरी बात, श्री कृष्ण जिन्होंने रासलीला की वो कौन है, वो भगवान है, ये भली भांति जान लेना चाहिए, और भगवान क्या चीज है ये भी समझ लेना चाहिए। तीसरी बात, भगवान की आयु केवल 28 साल की थी, और क्षमा कीजिए 8 साल 28 नहीं, भगवान की आयु केवल 8 वर्ष की थी। और चौथी बात, ये रासलीला जो हुई भगवान की योग माया शक्ति के अंतर्गत हुई, अर्थात ये पूरी तरह से एक आध्यात्मिक लीला है, भौतिक जगत से बिल्कुल तनिक कोई संबंध नहीं है, कोई मिलावट नहीं है इस भौतिक प्रकृति से, इस लीला का लेश मात्र भी कोई प्रदूषण नहीं है इस भौतिक सृष्टि का उस लीला में। ये है योग माया शब्द का तात्पर्य। तो भगवान श्री कृष्ण की रासलीला महामाया के अंतर्गत नहीं बल्कि योग माया के अंतर्गत हुई। तो ये चार बातें हैं, अब आने वाले दिनों में और ऐसे हम बातें बताते जाएंगे। ठीक है, तो आपके कोई प्रश्न है? केवल आज से संबंधित, आज की चर्चा से संबंधित यदि आपकी कोई विचार है तो आप कह सकते हैं। हाँ जी, अच्छा ऐसा करते हैं थोड़ा कीर्तन कर लेते हैं, दर्शन है, इसके बाद प्रश्न ले लेते हैं। ठीक है।